दुनिया में एक छोटी सी चीज ही आपको मिलना हो, मसलन किसी की शादी की तारीख ही तय हो गई हो, तो एक एक दिन गिन के गुजारता है कि हाय कोई ऐसी बात ना हो जाए कि ये सब कुछ कैंसिल हो जाए। कोई भी अहम चीज आपको मिल रही हो तो कितना खौफ होता है कि अल्लाह वो सुबह तुलू जरूर हो जाए, रात को नींद नहीं आती कि ऐसा ना हो कि सवेर तुलू ना हो सके, रात लंबी नजर आने लगती है। तो जो जन्नत के तलबगार हो, जन्नत के शौकीन हो, वो ऐसे ही बेखबर सोते रहे, उनको किसी चीज की फिक्र ही ना हो, ये नहीं हो सकता कि फिर वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाले ना हो, वो अपने वादे पूरे करने वाले ना हो, वो अपने फराइज से कोताही करने वाले हो, ये नहीं हुआ करता। हम क्या सोच के नमाज छोड़ देते हैं कि इसके बगैर भी जन्नत में चले जाएंगे, क्या सोच के झूठ बोल देते हैं, क्या सोच के दूसरों को धोखा देते हैं, क्या सोच के अपनी कमिटमेंट को नहीं निभाते, क्या अल्लाह ताला हमारी सिर्फ जबानी बातों से राजी हो जाएंगे। सूरत अलंकबूत के शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहसब अन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि बस वो इतना कहने पे छोड़ दिए जाएंगे कि वो ईमान लाए और उन्हें आजमाया न जाएगा, उनका इम्तिहान न लिया जाएगा। यानी सिर्फ ईमान का दावा कर लेना, सिर्फ कलमा पढ़ लेना और उसके बाद ये सोचना कि जन्नत हमारी हो गई और उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, तो ये महज तुम्हारा ख्याल है। और फिर ये भी याद रखो कि तुम्हारा ये सौदा अल्लाह के साथ है। तुमने अगर कहीं कोई कोताही की, कोई शिक पूरी ना की, तो फिर सोच लेना कि होता है क्या। फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं, वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये है अजीम शान कामयाबी। तुम कहां भूले हुए हो, किन चीजों को कामयाबी समझते हो? कामयाबी तो ये है, यानी हकीर से हकीर मामूली चीजों की खरीदारी के लिए हम मरते पड़ते जान घुलाते किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाते, लेकिन जन्नत का सौदा घर बैठ के ही हो जाएगा बगैर किसी कोशिश के। आज दुनिया का कोई भी सौदा करने वाला, दुनिया की कोई भी तिजारत करने वाला अपने सौदों के बारे में कितना कंसर्न होता है। ये जब आता है ना, फस्तबशिरु बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिह, तो स्टॉक मार्केट का सीन मेरे सामने आ जाता है कि लोग किस तरह उछल कूद रहे होते हैं बाज़ुकात जब उन्हें कोई नफा मिल रहा होता है या उनकी मर्जी का सौदा हो रहा होता है। हमने अभी तक यही नहीं समझा कि जन्नत की करेंसी क्या है। मसलन अगर आप किसी भी बाजार में जाते हैं तो जब तक आपके पास मतलूबा करेंसी ना हो आप चीज नहीं खरीद सकते। मसलन आपकी जेब में डॉलर्स भी हो लेकिन अगर कीमत आपको रुपयों में पे करनी है तो जब तक आपके पास मतलूबा रुपए ना हो तो हो सकता है आपका सौदा ही ना तय पाए, आप वो चीज खरीद ही ना सके। यानी यहां तो चले फिर भी दुकानदार डॉलर्स के लालच में वो डॉलर ले लेंगे आपसे, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में ऐसा नहीं होता कि वो आपका रुपया वसूल भी कर ले किसी चीज को बेचने के लिए जो उसकी मतलूबा करेंसी में ना मिल रहा उसको। लेकिन हम आज तक यही नहीं जान पाए, यही नहीं समझ पाए कि अल्लाह के हाँ किस करेंसी की जरूरत है और क्या वो हमने तैयार भी कर रखी है या उसके अलावा कुछ और तैयार कर रहे हैं जो वहां चलेगी ही नहीं। बाज़ुकात ऐसा होता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे होते हैं और आपने सामान या माल देखा नहीं होता लेकिन डीलर के ऊपर एतमाद करके आप करोड़ों लगा देते हैं, मगर अल्लाह पे हमारा एतमाद क्या इसके बराबर भी है कि हम उसके वादे पे यकीन करके, जबकि अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं कि अल्लाह से बढ़कर अपने वादे में कौन सच्चा है। और इस तिजारत के करने वालों की फिर सिफात क्या है, इनके औसाफ क्या है, इसकी शराइत क्या है? अत्ताइबून, तौबा करने वाले, बार बार अल्लाह की तरफ पलटने वाले। वो क्यों? इसलिए कि बहरहाल इंसान कमजोर है, सौदा करने के बावजूद, अहद माहिदा करने के बावजूद वो कहीं ना कहीं भूल जाता है, कहीं ना कहीं कोई खिलाफ वर्जी होने लगती है। तो अल्लाह ताला चूंकि रहमान और रहीम है इसलिए उसने ये नहीं कहा कि तुमने एक दफा अगर कोई इस सौदे के खिलाफ बात की तो उसी वक्त मैं डील कैंसिल कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें फिर मोहलत देता हूं, फिर मोहलत देता हूं कि तुम अगर जरा भी दाएं बाएं हो तो फौरन अपने ट्रैक पे आ जाओ, फौरन अपने अहद को निभाओ। अत्ताइबून, फौरन पलटो। जन्नत के खरीदार तो कसरत से तौबा करने वाले होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तग़फिरु रब्बकुम थुम्म तूबु इलैही, वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैही मिअत मर्रा। लोगो, अपने रब से बख्शिश तलब करो और उसकी तरफ पलट आओ। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह से इस्तग़फार और तौबा करता हूँ दिन में 100 बार। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जिसके बाद अगर नेकी हो जाए तो उस गलती को मिटा दिया जाता है, लेकिन बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं कि जिन पर शऊर के साथ जब तक तौबा ना की जाए, इंसान पलट ना आए, उस वक्त तक बात नहीं बनती। अलाबिदून, इबादत गुजार, और इबादत में सारी जिंदगी की इताअत शामिल है। और कभी भी कोई गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, तो तौबा के साथ ही फिर इबादत जरूरी है। सिर्फ जबानी इस्तिग़फार काफी नहीं, उसके बाद सदका खैरात करना, नफल पढ़ना या कोई भी नेकी का काम करना जरूरी है, ताकि जो नुकसान हमने किया अपने उस माहदे में उसको फौरी तौर पर दुरुस्त कर लिया जाए, उसको पूरा कर लिया जाए। फिर और क्या शर्त है इस सौदे की? अल्हामिदून, हमदो सना करने वाले, शुक्रगुजार लोग, अल्लाह का जिक्र और शुक्र करने वाले, हर हाल में अल्लाह की हमदो सना करने वाले। वो सिर्फ अपनी नमाजों को ही काफी नहीं समझते, वो इबादत सिर्फ नमाज रोजे की हद तक ही नहीं समझते, बल्कि उनकी तो सारी जिंदगी इबादत होती है। वो तो हर छोटी बड़ी बात पर अल्लाह की तरफ पलटकर अल्लाह की हमदो सना करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, अल्हामिदून होते हैं। और फिर सिर्फ जिस्मानी इबादत और जबानी शुक्र ही नहीं करते, बल्कि अस्साइहून, सियाहत करने वाले हैं, जमीन में गर्दिश करने वाले हैं। और ये सियाहत उनकी महज एंटरटेनमेंट की खातिर नहीं होती, महज दुनिया में घूमना फिरना नहीं, क्योंकि साहा यसीहू का मतलब होता है जमीन पे चलना फिरना। और यहाँ सिर्फ लुगवी सियाहत नहीं, बल्कि इस्तिलाही सियाहत मुराद है। उनकी सियाहत बराए तलब इल्म होती है, बराए हिजरत होती है, बराए जिहाद होती है, आसारे कदीमा से इबरत हासिल करने के लिए होती है। कायनात में फैली हुई निशानियां जो अल्लाह तक पहुंचने में मदद देती हैं, उनको देखने के लिए होती है। वो तरके दुनिया के लिए सियाहत नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला की इताअत में दुरुस्तगी पैदा करने के लिए सियाहत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सियाहत इख्तियार करने की इजाजत मांगी, और उससे मुराद उसकी क्या थी कि मैं दुनिया छोड़कर किसी जंगल में जा बैठूं और जंगलों में घूमू फिरूं। तो आपने फरमाया, सियाहत उम्मती अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, मेरी उम्मत की सियाहत अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलना है, अल्लाह के दीन को सीखने के लिए, सिखाने के लिए, तालीम के लिए, तबलीग के लिए, जंग के लिए, किताल के लिए, जहां जिस हाल में जो जरूरत हो। और इसमें सिर्फ मर्द नहीं, सूरत अत-तहरीम की आयत नंबर 5 में साइहात का लफ्ज भी आता है, यानी औरतों के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अस्साइहून, वो जमीन से जम के टिक के बैठ जाने वाले नहीं, वो हर दम मुतहर्रिक लोग हैं, वो भाग दौड़ करने वाले हैं, फी सबीलिल्लाह कोशिश करने वाले हैं। वो दुनिया को अपना घर नहीं समझते कि एक ही जगह जम कर रह जाएं। ये जितनी भी टर्म्स हैं, खा तलब इल्म हो, खा तबलीग हो, तालीम हो, जिहाद हो, कताल हो, हिजरत हो, ये सब इंसान से क्या मांगता है? हरकत, और इसी हरकत में बरकत है। अल्लाह के साथ सौदा करने वाले सिर्फ चंद काम करके मुतमईन होके बैठ नहीं जाते, वो हर दम और की जस्तजू में, बेहतर से बेहतर की जस्तजू में आगे बढ़ते हैं। अर्राकिऊन, रुकू करने वाले, अस्साजिदून, सजदे करने वाले। पीछे अलआबिदून की जहां बात हुई तो उससे मुराद थे तमाम इबादतों के करने वाले, लेकिन उन तमाम इबादतों में खास तौर पर नमाजों की कसरत वाले, अल्लाह के आगे आजजी करने वाले, झुकने वाले। क्योंकि नमाज क्या है? दिन में 5 दफा अपनी पेशानी जमीन पर रख के इंसान अपनी आजजी का इजहार करता है कि मैं कोई चीज नहीं हूं, मेरी अकल कुछ नहीं, मेरी हैसियत कुछ नहीं, मैं तो अल्लाह का एक आजिज बंदा हूं। और जहां तक सजदों की कसरत का ताल्लुक है तो उसके बारे में एक हदीस आती है। अन अबी फिरास रबीअत इब्न काब खादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू फिरास रबीअ बिन काब से रिवायत है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। वमिन अहले सुफ्फती, ये अहले सुफ्फा में से थे। खाला कहते हैं, कुंतु अभी तो मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गुजारा करता था। फआती ही बिवदूही व हाजतही, तो मैं आपके पास आपके वजू का पानी वगैरह लेकर आता, आपकी जरूरत का पानी लेकर आता। तो इसी तरह एक दिन जब मैं आपके पास आपकी जरूरत के लिए पानी लेकर आया, फकाला, तो आपने फरमाया, सलनी, मुझसे कुछ मांगो। फकुल्तु, तो मैंने कहा, अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्ना, मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ। फकाला अव गैर ज़ालिक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इसके अलावा कुछ और भी तुम्हारी तमन्ना है, कुछ और मांगो। कला हुआ ज़ाका, कहने लगा, मेरी तो बस यही तमन्ना है, मैं तो जन्नत का सौदागर था ना, हमारी तरह थोड़ी था कि आप फुलां जागीर मेरे नाम लगवा दीजिए, हर चीज तो आपके हाथ में, जो हुक्म देंगे मिल जाएगा मुझको। और सिर्फ जन्नत भी नहीं मांगी, सिर्फ जन्नत का सौदा भी नहीं, अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्ना, जन्नत में भी आपके साथ रहना चाहता हूँ जैसे यहाँ रह रहा हूँ। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है, तुम मेरी खिदमत करते हो, मेरा पल्लू पकड़ा हुआ है तुमने, तो मेरे साथ ही जन्नत में जाओगे। आपने फरमाया, फआइन्नी अला नफ्सिक बिकसरत सुजूद, तो फिर मेरी मदद करो अपनी जात पर सजदों की कसरत से। यानी अगर मेरे साथ जन्नत में जाना चाहते हो तो फिर सजदों की कसरत करनी होगी। तो जो लोग फराइज भी पूरे ना करें, जिनके फराइज में भी कमी हो, वो सजदों की कसरत कहाँ से लेकर जाएंगे? जो फर्ज नमाज तक में कोताही करते हो, फिर वो बाकी सब कुछ कहाँ से करेंगे? अर्राकिऊन अस्साजिदून अलआमिरून बिलमारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देने वाले और बुराइयों से रोकने वाले। जन्नत में जाने वालों के लिए एक शर्त है, कंडीशन है, इस माहिदे की एक अहम क्लॉज है। क्या? कि सिर्फ अपनी जाती जिंदगी की हद तक ही इबादत गुजार और शुक्र गुजार और रुकू सजदे करने वाले न हो, बल्कि नेकी का हुक्म देने वाले और बुराइयों से रोकने वाले हो। सिर्फ अपनी खैर नहीं, दूसरों की भी भलाई चाहने वाले हो। अलआमिरून बिलमारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, इससे पीछे भी कई दफा आपने अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर की बात पढ़ी, और उसमें न सिर्फ ये कि मर्द हजरात बल्कि खवातीन का किरदार भी पड़ा। बल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलिया उबाद यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर। और यहाँ फिर दोबारा से ताकीद आ गई कि जन्नत में जाने के लिए जरूरी है कि दूसरों को खैर की तरफ बुलाओ, अगर ऐसा न किया तो तुम्हारा अपना भी नेकी पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर तो एक कुंजी है खुद को मारूफ में कैद करने की और मुनकर से आजाद करने की। और फिर वल्हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले। गोया आयत का इख्तिताम कुछ ऐसे अल्फाज के साथ हुआ जो पूरे काम को कवर करने वाला है, यानी हर काम में अल्लाह की हुदूद के निगहबान, इसी तरह जैसे बाग के लिए बागबान, ऐसे ही ये जन्नत में जाने वाले अल्लाह के दीन के और अल्लाह की इताअत के सारे कामों के निगहबान होते हैं। वो किसी भी मामले में फिर हद से नहीं बढ़ते, कोई ऐसा कदम नहीं उठाते कि जिससे इस सौदे को कोई नुकसान पहुंच जाए। वबशिरिल मोमिनीन, और मोमिनों को खुशखबरी दे दो। मोमिनों के लिए बशारत है। किस बात की बशारत है? कि अगर तुमने अपनी ये शरायत पूरी कर दी तो तुम्हारे लिए भी फिर जन्नत का वादा पक्का पक्का है। अब अपने आप को देखिए कि इसमें से कितनी शरायत आप पूरी करते हैं। हम जाना तो जन्नत में चाहते हैं, लेकिन अपनी गलतियों की तरफ तवज्जो ही नहीं, इबादतें तरीका ही मालूम नहीं, बात बात पे शिकवे हैं बंदों से भी और अल्लाह से भी। दुनिया के कामों के लिए घरों से निकले तो निकले, हाँ पूरी दुनिया घूम आए, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए सियाहत, हाँ सीखने के लिए या सिखाने के लिए या फैलाने के लिए, उसका तो हमें तसव्वुर ही नहीं। फिर रुकू सजदों की कसरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था कि जब आपको कोई मामला पेश आता फौरन नमाज की तरफ दौड़ते, फौरन नमाज की तरफ पलटते, और हम तो अपने इस्तखारे भी औरों से करवाते हैं। और फिर सिर्फ अपनी जात तक नेकियों को रखने वाले नहीं, दूसरों तक भी लेके जाने वाले, और अपने दीन की सारी हुदूद की सारी चीजों की हिफाजत करने वाले। हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह, कहाँ कहाँ हद है, कहाँ तक मेरी लिमिट है, कहाँ तक मुझे जाने की इजाजत है। वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह में मेरी लिमिट्स क्या हैं? और फिर सिर्फ लिमिट्स का ही नहीं मालूम होना, बल्कि जैसे बाग की बाउंड्री वॉल क्यों बनाई जाती है, ताकि बाग की हिफाजत हो सके, तो ऐसे सारे कामों से बचना मुराद है यहाँ, जिससे इस माहदे में कोई खलल आए, दीन को कोई नुकसान पहुंचे। हुदूद से मुराद क्या है? वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनका पीछे जिक्र किया गया या अल्लाह की किताब में और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, उन सब की हिफाजत लाजिम है। क्योंकि बाज़ वक़्त क्या होता है कि हम काम कर भी लेते हैं लेकिन उसको गंवा देते हैं, उसको जाया कर देते हैं, या नेकी के पर्दे में गलत काम कर रहे होते हैं, या नेकी की आड़ में नेकी नहीं कर रहे होते। हुदूद को न जानना तो ऐसा ही है ना कि जैसे कोई शख्स ड्राइविंग की ट्रेनिंग लिए बगैर गाड़ी लेके सड़क पे आ जाए तो नतीजा क्या निकलेगा जो यहाँ निकलता है। बाज़ोकत ऐसा होता है ना कि जैसे टेंडर मंगवाए जाते हैं किसी सौदे से पहले, और लोग सैंपल पेश करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के, तो जो प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो तो उस सौदे को रिजेक्ट कर दिया जाता है या उस शख्स को चांस नहीं दिया जाता। तो हम जो जन्नत के खरीदार बने हुए हैं, कभी हमने गौर किया कि हमारी शख्सियत के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो वहां मतलूब है। चंद चीजों की तरफ मैं फिर से तवज्जो आपकी दिलाना चाहूंगी। तो आज मैं ऐसा लाहे अमल अपने और आपके लिए तैयार करना चाहती हूँ जो प्रैक्टिकली ये काम हमसे करवा दे, ताकि हमारे सौदे में खलल ना आए, और फिर हम वक्तन फवक्तन अपने आप को चेक करते रहें कि क्या हम ये शरायत निभा रहे हैं। अब आप देखें कि जब आपको ये यकीन हो जाता है कि आपने जो राह चुनी है वो दुरुस्त है, उसके बाद ये मरहला आता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अन्फुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, फिर जन्नत की खरीदारी का मरहला आता है। उससे पहले तो हम जन्नत के खरीदार भी नहीं बनते, वो हमारी प्रायोरिटीज में से ही नहीं, वो हमारी सोचों में से ही नहीं, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। यानी आप खुद सोचिए कि हम में से कितने लोगों ने कभी शऊरी तौर पर सोचा हो कि हमें जान और माल देकर जन्नत चाहिए। इससे पहले तो हम किस तरह जन्नत के खरीदार थे, फ्री में, मुफ्त में, आरजुओं में, तमन्ना और ख्वाहिशात के बल पर। पत्थर पे लकीर और पानी पे लकीर की बात भी आपने सुन रखी होगी। तो जो इंसान पत्थर पे लकीर जैसा फैसला करता है, फिर वो कोई भी ऐसा डिसीजन लेने में शेकी नहीं होता। उसे पता होता है कि मैंने सोच समझ कर फैसला किया है, मेरा कोई नुकसान नहीं है माल और जान देकर, कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन अगर मजबूत बुनियाद नहीं तो किसी भी शख्स की बात आपको फौरन अपने सौदे से फेर देगी। कई सौदे आप करके फिर जाते हैं ना, फिर आप फिरेंगे नहीं इस सौदे से। फिर आप देखें कि अगर हमारे पास कोई बेचने वाली चीज हो और हम उसको बेचे नहीं तो क्या होता है। मसलन ये रेड़ी पर आप गुजरते हैं, देखते हैं कि तरह तरह के फ्रूट पड़े होते हैं, तो जो मालिक होता है उसकी क्या तमन्ना होती है, जल्दी से बिक जाए ताकि मुझे फायदा हो। अगर ये मैंने बेची नहीं तो क्या होगा, खराब हो जाएगी। चलिए थोड़ी देर के लिए हम भी सोच लें कि हमने अगर अपना माल और अपनी जान अल्लाह को नहीं दी, कहाँ बचा के ले जाएंगे, कहाँ जाएगी, बोलिए, कहीं बचा के संभाल के रख लेंगे इसको, जान भी जाएगी माल भी जाएगा। एक वक्त आएगा कि ये दोनों चीजें आपको देनी ही पड़ेंगी या आपसे ले ली जाएंगी। तो बेहतर नहीं कि इससे पहले कि वो यूं ही ले ली जाएं, आप क्या करें, खुशी से बेच डालें। बाजों का ऐसा होता है कि लोग अपने पैसे बैंकों में रखते हैं और कभी फॉरेन करेंसी अकाउंट जो होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, हालांकि उससे पहले उनकी बहुत अच्छी कीमत मिल सकती होती। तो उस वक्त वो बहुत हसरत का शिकार होते हैं, काश मैंने अपने ये पैसे, जैसे आजकल सऊदीज के अकाउंट्स जो यूरोप में हैं या वेस्ट में हैं, उनके साथ हो रहा है कि रातों रात किसी के बारे में भी डिसीजन हो जाता है कि इसका अकाउंट फ्रीज कर दो। हालांकि उससे पहले एक लंबी मोहलत थी उनके पास कि वो अपने पैसे को कहीं भी मुंतकिल कर सकते थे या उससे कोई भी फायदा उठा सकते थे। लेकिन अचानक आप ऐसी खबर सुनते हैं, तो ऐसे में उस शख्स की हसरत का क्या अंदाजा होगा जिसकी उम्र भर की कमाई आन की आन में उसके हाथ से गई। बिल्कुल इसी तरह अगर हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं करते अपने माल और जान के बारे में तो क्या होगा, क्या मुमकिन सूरत हो सकती है, खुदा ना खास्ता किसी हसरत व यास की। और कल क्यामत के दिन बैठ के हम फिर सोचेंगे, काश मैं इसको उस जगह लगा के आती कि जिसका बदला आज वो मुझे मिलता जो फलां और फलां को मिल रहा है। वो कितने अकलमंद थे जिन्होंने ये फैसला किया था और मैंने इसको बचा के क्या नुकसान किया। आज जिस कोशिश को हम छोटा समझते हैं, आज जिस काम को हम हकीर समझते हैं, और ये सोच के कौन इतना इंतजार करे कि 10 साल बाद ये चीज हमारे सामने नफे की शक्ल में आए, तो हम उस पर कोई स्टेप नहीं लेते। लेकिन एक वक्त आता है कि फिर हसरत यास के सिवा कुछ नहीं होता। उस वक्त इंसान पछताता है, काश वो वक्त लौट आए और मैं अपना डिसीजन बदल लूं। बाज़ोकत ऐसा भी होता है कि मसलन आपके पास कोई गोल्ड की चीज है, आप सोचते हैं मैं इसको बेच के फलां काम कर लूं, फलां जगह इन्वेस्ट कर दूं या कोई भी चीज इससे ले लूं, और आप उसमें सुस्ती कर जाते हैं। अच्छा आज नहीं, कल, कल नहीं परसों, होता क्या है अचानक वो चीज खो जाती, वो जेवर कहीं पहन के गए आप, गिर गया। उस वक्त दिल का क्या हाल होता है, उस वक्त आप सोचते हैं काश मैं उसको बेच डालती और उसके बदले फलां चीज खरीद लेती जो इस वक्त मेरे काम तो आती और वो यूं गुम भी ना होती और मेरी फलां मुश्किल भी आसान हो जाती। लेकिन उस वक्त हसरत याद से कुछ भी ना होगा। आज अगर हम सुस्ती करते हैं और वो शरायत पूरी नहीं करते उस सौदे की जो अल्लाह ताला हमसे जन्नत का करना चाहते हैं, तो ये सुस्ती कहीं बहुत बड़ी हसरतों का सबब न बन जाए। एक और बेहतरीन खूबसूरत बात इस सौदे में ये है कि जिससे हम ये सौदा कर रहे हैं और जिन चीजों के साथ कर रहे हैं वो हैं भी उसी की, और वो हमें मोहलत दे रहा है कि मेरी दी हुई चीजों को दोबारा मुझे देकर इससे बड़ी चीज ले लो। तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें यही काफी, जब भी कोई बिजनेस का नया चांस होता है तो आप हमेशा देखते हैं परख करके कितने फीसद नफा होगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, और अमूमन वहां लगाते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा नफा हो। लेकिन फिर भी कुछ यकीनी बात नहीं होती, दुनिया में किसी भी सौदे पर किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, उसका फायदा ज्यादा भी हो सकता है और उसको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला के साथ जब सौदा करता है इंसान तो फिर 100% मुनाफा है, नुकसान का अंदेशा ही नहीं। कितनी हैरत की बात है ना कि जब किसी इंसान के पास इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी इंसान को कुछ देते हैं तो उस पर फिर भी एतमाद कर लेते हैं कि नहीं हमें मुनाफा मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह के साथ ये सौदा करते हुए हमें यकीन नहीं होता। क्योंकि अगर यकीन होता तो पीछे ना रहते। दुनिया में अगर कहीं भी आपको पता चले कि फलां जगह इतना हलाल प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, अगर मसलन 1 लाख दोगे तो 5 हजार तुमको महीने का मिलेगा, हमें से कोई पीछे ना रहे। लेकिन आखिरत जो कई गुना जायद असल कीमत से भी बहुत जायद मुनाफा मिलने वाला है, उसके बारे में हम अल्लाह की जात पर भरोसा ही नहीं करते, यकीन नहीं है हमको कि उसका वादा सच्चा है। हालांकि अल्लाह ताला उसके बाद क्या फरमाए, वमन औफा बिअहदिही मिन अल्लाह, अल्लाह से बढ़कर वादा भी किसका सच्चा होगा। अल्लाह ताला के सौदे को सूरत असफ में बराह रास्त तिजारत भी कहा गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, हल अदुल्लुकुम, क्या मैं बताऊं तुमको, अला तिजारतन, एक तिजारत का पता बताऊं तुमको, तरीका बताऊं तुमको, कौन सी तिजारत, तुंजीकुम मिन अजाबिन अलीम, जो तुमको दर्दनाक अजाब से बचा ले, जो दर्द देने वाले अजाब से बचा ले। तिजारत, तिजारत का लफ्ज ऐसा है कि जिसमें हर शख्स के लिए अट्रैक्शन है, एक खूबसूरत लफ्ज, दिलचस्प लफ्ज। तिजारत का लफ्ज सामने आते ही एक नफा, एक उम्मीद, एक होप नजर आती। अल्लाह ताला बंदों की नफ्सियात समझते हैं, लिहाजा उन्हें एक ऐसी चीज की तरफ बुला रहे हैं कि जिसकी तरफ हर कोई आना चाहेगा, और फिर तिजारत भी ऐसी कि जिसके जरिए एक बड़ी तकलीफ से बचा जा सके। और तिजारत वो चीज है जिसमें इंसान अपना माल, वक्त, मेहनत, जहानत, काबिलियत इसलिए लगाता है कि उससे कोई फायदा हासिल हो। फरमाया, मैं बताऊं तुमको वो तिजारत, अगर तुम उसमें अपना माल, जान, वक्त, सरमाया, सलाहियत, कोशिश, मेहनत लगाओगे, उसका फायदा तुमको क्या मिलेगा, कि जवाबन तुम दर्दनाक अजाब से बच जाओगे।